خدا جزائے خیر دے آپ کو، اور آپ کے ہر بیت پر آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام جزائے خیر عنایت فرمائیں. اس سے قبل کہ آپ کی خدمت میں اپنی معروضات کو پیش کروں، آپ حضرات سے التماس ہے، سب سے پہلے تمام شہداء اسلام، شہداء آزادانی، بالخصوص اس سال ایبٹ آباد میں جو مومنین جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی روح کے ساتھ ساتھ جیکب آباد میں اور دنیا کے دیگر نقاط میں جہاں مومنین مومنات عزا کے اہتمام میں شہید کر دیے گئے، ان کے لیے اور بانیان مسجد جناب عباس صاحب اور ان کے اہلیہ کے مرحومین، بالخصوص فاطمہ بنت مولدینہ یوسف، مومن ابن حسن علی اور نرجس بنت یوسف علی، داؤد ابن مولدینہ صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی اموات اور میری اموات کو، اور جناب محب صاحب کی جو بھی مرحومین ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرع الفاتحة مع الصلوات. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، اللہم فاتحہ برائے شہداء کربلا. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات محمد. اعزان گرامی، ابھی ہم سب مدح مولا سماعت فرما رہے تھے، تمام مومنین محظوظ ہو رہے تھے، مولا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، عمر بابرکت عنایت فرمائے، آپ کا قلم ہمیشہ دین مبین اسلام اور ان کے رکھوالے، اس دین کے رکھوالے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حیات طیبہ کو بیان کرنے میں چلتا رہے اور ان کے مقصد کی بیان میں مصروف ہے کار رہے. قرآن مجید کا یہ مشہور و معروف سورہ، جس کو سورہ عصر کے نام سے جانا جاتا ہے، عصر کہتے ہیں زمانے کو، اور زمانے سے مراد خداوند عالم جب قسم کھاتا ہے تو اس زمانے کی، اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو قابل قبول اور قابل اعتبار ہو. تو زمانے سے مراد زمانے نبی اور زمانے کا امام ہے، اور مفسرین نے اس زمانے کی قسم انسانی اعتبار سے اس طرح سے بیان کی ہے کہ وہ زمانہ جس میں انسان بکتا ہے، جب ہر انسان بکتا ہے، کوئی مقام کے بدلے بکتا ہے، کوئی مال کے بدلے بکتا ہے، कोई शोहरत के बदले बिकता है। लेकिन इस घर को सजा लेने वाले और दुनिया को सजाने वाले बाजार में वो कौन है जो रब के लिए बिकता है? उस ज़माने की कसम अल्लाह खा रहा है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, इन्ना ताकीद के लिए आया है और अल्लाह किसी काम के लिए ताकीद करे, इन्नल इंसान लफी खुसर, और अल इंसान के ज़रिए नहीं बल्कि कुल इंसान को अल्लाह ने खुसरान में बयान किया है। मैं आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, एक होता है नुकसान, एक होता है खुसरान। नुकसान हमेशा फ़ायदे में होता है और खुसरान असल में होता है। किसी को बिज़नेस में वो फ़ायदा ना मिले जो मिलना चाहिए, उसको नुकसान कहते हैं, और खुसरान जैसे बिज़नेस में आग लग जाए, कुछ ना बचे। तो खुदावंद आलम उस ज़माने की कसम खा रहा है कि जिस वक्त इंसान की बोली लगाई जाए। अब देखना यह है कि ये इंसान किस चीज़ के मुकाबले में बिकता है। आप तारीख़ का मुतालिया करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अशार की ये तमाम की तमाम चीज़ें जो अशार की शक्ल में, जो मकालात की शक्ल में, नज़्म और नसर की शक्ल में बयान होती हैं, हकीकत में ये इल्म तारीख़ का बयान है। इल्म कलाम वग़ैरह की भी इसमें वसअतें हैं, लेकिन अक्सर शोरा इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, चूँकि ये बाब अहले बैत से मुताल्लिक है। जो अकायद उन्होंने बयान किए हैं, उन अकायद को बयान करना हमारे कलम की वसअत से बाहर है, अकीदे का जो मेयार है। लेकिन हकीकत यह है कि तारीख़, और तारीख़ कुरान मजीद का तीसरा मेजर सब्जेक्ट है, चूँकि कुरान तीन सब्जेक्ट पे नाजिल हुआ है, तौहीद, अहकाम और तारीख़। कुरान मजीद के ये तीन मेन सब्जेक्ट हैं, और तारीख़ को इंसान पढ़ता रहे, तारीख़ की अपनी बड़ी अजमत है। लेकिन इस चीज़ के लिए जो इल्म दीन के साथ तारीख़ को पढ़ाया जाता है, चाहे वो कुरान को समझना हो, चाहे वो तारीख को समझना हो, चाहे वो हदीस को समझना हो, उसके लिए नौ किस्म के इल्म दरकार हैं कि जब तक इंसान उन उलूम से वाकफियत नहीं रखता तो ये चीज़ें उसको धोखा दे सकती हैं। अगर कुरान बग़ैर उलूम आले मोहम्मद के पढ़ा जाए तो इसी कुरान की आयत से इंसान अल्लाह को मुजस्सम भी कर दे, जा रब्बुका फल मलकुन सफ़न सफ़ा, जब अल्लाह आएगा तो मलाइक सफ़ में खड़े हो जाएंगे। कुरान की आयत है, अगर इंसान उलूम आले मोहम्मद के बग़ैर पढ़े तो कहेगा कि अल्लाह, इसका मतलब कहीं अल्लाह गया है तो आएगा। लेकिन जब आले मोहम्मद से इसकी तफसील पूछी तो कहा नहीं, हुक्म, जब हुक्म खुदा आएगा, खुदा के वजूद को आप किसी हाल में इनकार नहीं कर सकते, जब हुक्म खुदा आएगा तो मलाइक सफ़ में खड़े हो जाएंगे। अब ये तफसील कहाँ और वो तफसील कहाँ कि जब खुदा वंदे आलम आएगा और बादशाह की कुर्सी पे बैठेगा और ये तमाम चीज़ें, चूँकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके माना अलग हो जाते हैं, इंसान अपने एतबार से उसकी तफसील करता है। मैंने पहले भी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की एक गज़ल है जिसको आपने रिसालत मुआब और अल्लाह के सिलसिले में कही है, इरफानी गज़ल है, मन बे खौले लबत यौर गिरफ़्तार शुदम, चश्मे बीमार तोरा दीदम बीमार शुदम। रसूल अल्लाह के लब मुबारक पर एक तिल था, उसके सिलसिले में इमाम खुमैनी अपनी इस गज़ल को कहते हैं कि मैं आपके इस लब मुबारक पर जो तिल है उसका मैं बीमार हो गया। वजह यह है कि मैं इस खूबसूरती को देखने निकला था, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ तो यह हिलता है, जब यह हिलता है तो मैं इसको और दकीक नज़रों से देखता हूँ, ताकि मैं जिस चीज़ को देखना चाहता हूँ उसको जुम्बिश के दरमियान देखता हूँ तो उसके बदले में मेरे कानों में कुरान की आयतें सुनाई देती हैं। जब लब हिलते हैं, जुम्बिश पैगम्बर इस्लाम जुम्बिश करते हैं, तो उस वक्त देखता तो मैं इसको हूँ लेकिन आयतें सुनाई देती हैं जो मेरी दुनिया को बदल देती हैं। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ شخص کہتے ہیں کہ چشم بیمار تو دیدم و بیمار شدم، یا رسول اللہ، اللہ کی محبت میں میں نے آپ کی جو نظروں کا انداز دیکھا، میں اس نگاہ کرم کا، نگاہ شرف کا، نگاہ کرامت کا بیمار ہو گیا. پھر امام خمینی کہتے ہیں کہ من از مسجد و مدرسے بیزار شدم، میں مسجد اور مدرسے سے بیزار ہو گیا. اب وہی بات کہ جب انسان اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے، اپنے حساب سے کسی چیز کو کرتا ہے، تو ہم سوچتے تھے کہ مسجد میں مومنین مسئلے پوچھ پوچھ کے تنگ کرتے تھے اور مدرسے میں بچے تنگ کرتے تھے، اس لیے امام خمینی نے اپنی پریشانی کو اپنی غزل میں بیان کر دیا، من از مسجد و مدرسے بیزار شدم. تو جب ہم نے اپنے استاد کو اس کو بتایا تو بڑے ہنسے، کہنے لگے نہیں، یہ عرفانی غزل ہے. اس میں کہتے ہیں کہ امام خمینی کہنا چاہتے ہیں کہ خدایا، نہ تو یہ مسجد اور نہ یہ مدرسہ میرا گول نہیں ہے، میرا ہدف نہیں ہے، یہ میرا ہدف نہیں ہے، میرا ہدف تو ہے. اس ہدف میں میں کب تک رہوں، میں اس وسیلے میں کب تک رہوں، مجھے ہدف چاہیے، مجھے ہدف چاہیے. تو عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ انسان کہ جب اس کی بولی لگائے، ہر انسان کی بولی لگائی جاتی ہے اس زمانے میں، ہر انسان کی، ہر شخص کی بولی لگائی جاتی ہے. اب وزن دیکھنا ہے کہ وہ کس کے مقابلے میں بک رہا ہے، وہ کس کے مقابلے میں بک رہا ہے، دولت کے مقابلے میں، شہرت کے مقابلے میں، مقام کے مقابلے میں. مولا کائنات تو اس دنیا کی حقیقت کو پہلے ہی واضح کر گئے، مال کے لیے تو کہتے ہیں انسان عجیب و غریب ہے، پہلے مال کے لیے صحت خراب کر لیتا ہے، پھر صحت کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے. نہیں ہمارے ڈاکٹر حضرت صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی علی محمد، پہلے تو مال کے لیے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک سادھو مہاراج درخت کے نیچے سو رہے تھے ٹھنڈی ہوا میں، تو ایک آدمی تھکا ہوا آیا، وہ وہاں بیٹھا، اس نے کہا جیسے یہ لیٹے میں بھی لیٹ جاتا ہوں، وہ بھی لیٹ گئے، ان کو نیند آئی بڑی درخت کی ہوائیں. جب بہت وقت گزر گیا تو مہاراج تو اپنے ٹائم پہ اٹھ گئے، لیکن وہ دوپہر میں شام ہو گئی سوتا رہا. مہاراج نے کہا بچہ اٹھو، سانجھ ہو گئی، شام ہو گئی، اٹھو، یہ پھل کھاؤ. کہنے ارے مہاراج پھل ول مت دو، مجھے دعا دو. کہا بھائی کیا دعا دو؟ کہا مہاراج مجھے دعا دو کہ میرا روزگار لگ جائے. کہنے کہا اچھا بھیا، روزگار لگ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ پھر میں خوب کماؤں. کہا اچھا خوب کما کے کیا کرو گے؟ کہا پھر شادی کروں. بیچارہ اس کو نہیں معلوم کیا ہونے والا، اللہ شادی کروں. کہا اچھا بچہ شادی کر کے کیا کرو گے؟ کہا بابا پھر بچے ہوں گے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ان کی پرورش کروں گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا بہترین مکان بناؤں گا، سب کچھ بناؤں گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر آرام سے سو جاؤں گا. انہوں نے کہا بیٹا سونے کے لیے اتنے جتن نہ کر، یہیں سو جا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی علی محمد والے. یعنی اگر سونے کے لیے تو اتنے جتن کر رہا ہے تو یہیں سو جا، ایسی نیند پھر کبھی نہیں آئے گی، ایسی نیند پھر کبھی نہیں آئے گی. کہتے ہیں کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. تو بہرحال شاعر جو ہے اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ بات کہہ جاتا ہے، اس کی مجبوری کو بتا، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اور یہ مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں. تو عزیزان گرامی، انسان کا، ہر انسان کا ایک وقت آتا ہے جس پر وہ بکتا ہے. بس اس کی عظمت، اس کی کرامت، اس کی شرافت، تاریخ کی نظر اس وقت ہو جاتی ہے کہ وہ کس کے مقابلے میں بک رہا ہے. اگر بکنے والا احساس، چونکہ یہ دنیا جو ہے، اس کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا کو چار حصوں میں تقسیم کیا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور خوشبو میں، چار چیزوں میں تقسیم کیا اس دنیا کو. کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کی بہترین غذا کھانا چاہے، خالص ترین غذا کھانا چاہے، تو دنیا کی خالص ترین غذا ہے شہد. مولا فرماتے ہیں ایک مکھی کا تھوک کھا کے خوش ہوتا ہے, کہتا اس کو کھا کے خوش ہوتا ہے, اس کو کھا کے غرور کرتا ہے. کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین پینے کی شے جو ہے پانی ہے, پانی. آپ تمام چیزیں پی لیں, دنیا بھر کے مشروبات پی لیں, لیکن پانی میں جو تسکین ہے وہ کسی میں نہیں, چونکہ خود اس کی اصل پانی ہے, انکار نہیں کرتا. تو مولا فرماتے ہیں اس کو پی کے غرور کرتا ہے جو ہمیشہ نشیب تلاش کرتا ہے, بلندی نہیں. وہ پانی ہمیشہ نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر نہیں جاتا. کہا اس پستی پذیر شے کے لیے تو اتنی باتیں کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں تیسری چیز ہے لباس. فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے عالی ترین لباس ریشم کا. کہتے ہیں اس کی حقیقت جانیے کبھی کہ کیڑے کا فضلہ ہے, اس کی حقیقت جانیے کبھی اس کی. پھر مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز ہے خوشبو میں کستوری. کہتے ہیں اس حیوان کا جمع ہوا خون جس کی وجہ سے وہ خود پریشان رہتا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تو اپنے سر کو عزت و شرف اور افتخار سے بلند کرنا چاہتا ہے تو یہ کہ خدایا میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیز نگرامی, ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جہاں پر زندگی کو معنی ملے ہیں, جس جگہ پر شجاعت, کرامت, شرافت, عزت, ایمان, بلندی, تمام کی تمام چیزیں ہمیں ملی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اللہ کے ذریعے استثنا کیا, جدا کیا کہ تمام لوگ خسران میں نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اعمال صالح انجام دے ایمان لاتے ہیں, نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ اعمال صالح انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق, اور وصیت کرتے ہیں حق کی. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی. تو ان چار چیزوں کے لیے قرآن مجید کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہماری فزیکل جو باڈی ہے, ہمارا جسم جو ہے, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد علم کی دو قسمیں بیان فرمائی. ویسے تو علم کی جدا گانا اگر کی جائے تو علم نظری, علم تکوینی, علم طبیعی اور علم, تو دو ہوئے کہ ایک علم تکوینی ہوتا ہے اور ایک علم حضوری ہوتا ہے, حصولی ہوتا ہے, ایک حضوری ہوتا ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے. بچے کو کسی نے نہیں سکھایا کہ بھوک لگے تو رو, ماں دودھ پلا دے گی, کسی نے نہیں سکھایا. یہ اس کا علم ہے, جب اس کو کوئی پن چبایا جائے تو اس کی باڈی, اس کا نروس سسٹم اس کو یہ کہے کہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے, یہاں سے ہٹا لو. تو یہ تمام یہ علم حضوری کہلاتا ہے, اور وہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے اس کو علم حصولی کہتے ہیں, اس کی مختلف قسمیں. لیکن علم حصولی اور حضوری کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دو حصوں میں تقسیم کیا. امام فرماتے ہیں العلم علمان, العلم العبدان و علم الادیان. علم کے دو حصے ہیں, وہی دو علم مفید ہیں. ایک علم ابدان بدن کا علم ہے, اور ایک ادیان دین کا علم ہے. ایک بدن کا علم ہے, ایک دین کا علم ہے. بدن کا علم فزیکل فٹنس یا انسانی اس کے لیے, اور علم ادیان جو ہے وہ روح کا علم ہے. وہ انسان کی روح کے وائرس کو دور کرتا ہے, وہ انسان کی روحانی چیزوں کو صحیح کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب کبھی ہمارے یہاں پہ ٹی وی ٹھیک کرنے والے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنا پورا کٹ بیگ لاتے تھے. اس میں جو ہے اسکرو ڈرائیور بھی ہوتا تھا, اس میں ٹیسٹر بھی ہوتا تھا, اس میں الائنر بھی ہوتا تھا, اس میں میٹر بھی ہوتا تھا. لیکن اب جب کبھی ہمارا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پیچکس, ہتھوڑی, یہ سب کوئی لے کے آتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب وائرس آتا ہے تو سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے صحیح کیا جاتا ہے, ہارڈ ویئر کو ہارڈ ویئر سے ٹھیک کیا جاتا ہے, और सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर से ठीक किया जाता है। लिहाजा इंसान की बॉडी की 6 हालतें हैं जिसको इमाम बयान करते हैं। कहते हैं कि जिस्म की 6 हालतें हैं फिजिकल। इस तो फरमाते हैं कि पहली हालत है बेदारी, जागना, या तो इंसान जागता है, और दूसरी हालत है ख्वाब, सोना। बेदारी और ख्वाब, एक जागना और एक सोना। दूसरा फरमाते हैं कि इल्म की दूसरी जो हालत है वो है सलामती और बीमारी, या जिस्म सालिम है या बीमार है। तीसरी फरमाते हैं कि इल्म की जिस्म की तीसरी हालत ये है कि या वो ज़िंदा है या वो मुर्दा है, या ज़िंदगी करता है या मर जाता है। कहते हैं कि 6 हालत जिस तरह से जिस्म की हैं, अल्लाह ने ये 6 हालत रूह की भी रखी। रूह जो है कभी बेदार है, सोई हुई नहीं है। इस रूह की बेदारी को कहते हैं ज़मीर की बेदारी। अगर इंसान ज़मीर साहिब ज़मीर है तो उस वो बेदार है, और इसके मुकाबले में अगर इंसान की रूह सोई हुई है तो वो बेज़मीर है, ख्वाब गफलत है। उसकी कौम के साथ क्या हो रहा है? तो आगाही का नाम बेदारी है। रूह की बेदारी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगाह रहे अपने हालात से, आने वाले हालात के बारे में वो सोचे। अब हम जिस चीज़ के लिए सोचते हैं उस काम को कर बैठते हैं, समझ ना। हमारे शमशी साहब बहुत दूर रहते हैं, हम साल में एक बार जाते हैं तो हमें GPS लगाना पड़ता है ढूंढते, लेकिन शमशी साहब ने तय कर लिया है कि इतना तो होना है, इतनी देर तो और जाना है। अब चाहे जितना आर्ग्यूमेंट कर ले कोई कि इतनी दूर उतना नहीं, सोचते हैं जाना है तो जाना है, अल्लाह सलामत रखे इनको। लेकिन तय कर लिया तो आ गया, और जिसने तय ना किया वो अपने बिस्तर से भी ना उठा, वो अपने बिस्तर से भी ना उठा, समझ रहे ना, वो अपने एतबार से। तो कहते हैं कि ज़मीर की बेदारी आगाही का नाम है। शरीयत हमें आगाह रहने के लिए कहती है कि अपनी कौम के बारे में तदब्बुर करते रहो, तफक्कुर करते रहो, और अपनी इस रूह को बेदार रखो, ऐसा ना हो कि दुश्मन तुम्हारे साथ खेल जाए और तुम्हें पता भी ना चले। देखो कि तुम्हारा नफ्स किस चीज़ से खुश होता है, तुम्हारा नफ्स किस चीज़ से खुश होता है, किस चीज़ से नाराज़ होता है। जब हम शुगर की रिपोर्ट से डॉक्टर ये कहता है कि कभी खाने से पहले चेक करो, कभी खाने के 2 घंटे बाद, कभी सुबह करो, कभी रात को करो, ताकि पता चले कि ये आपके जहन की शुगर है या वाकई ये कंडीशन की शुगर है, समझना। अलग अलग टाइम देता है। तो इंसान को अपने रूह को चेक करते रहना चाहिए, क्या मैं बेदार हूँ या नहीं। अगर मैं बेदार हूँ तो इस बेदारी को कौन मुझे देगा। बेदारी के माना है रूह की बेदारी यानी आगाही। आगाही कौन देगा? जब अल्लाह ने तय कर दिया कि रूह के लिए इल्म अदियान है, अल इल्मो इल्मान, अल इल्मो अबदान यानी बदन का इल्म, व इल्मुल अदियान और दीन का इल्म। तो जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम आए तो इंसान को डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हमारे पास भी बहुत आते हैं, मौलाना दुआ पढ़ दो, ठीक है दुआ से, लेकिन हम कहते हैं भाई डॉक्टर को। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की खिदमत में आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि, यमना रसूलल्लाह दुआ फरमाइए मैं बीमार हूँ। इमाम ने फरमाया दवा ली तुमने? कहा कि जब दुआ है तो फिर दवा क्या। आपने फरमाया दवा का इनकार अल्लाह की हिकमत का इनकार है, चूँकि जो दवा बनाई है अल्लाह ने बनाई है, ये सारे जो चीज़ें दुनिया में पैदा हुई हैं। और एक सूरह भी आया है सूरह लुकमान इसी बात से कि अगर कोई इंसान इस चीज़ का इस्तेमाल करे तो, सूरह लुकमान यानी दवाएं, ये तमाम की तमाम चीज़ें। तो अगर रूहानी जिस्मानी प्रॉब्लम है, परेशानी है, नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर से नुस्खा ले। और अगर रूह यानी इंसान अजीब है, मसलन सोने के लिए दवा लेता, अल्लाह कह रहा बेदार रहो और वो कह रहा है सोने की दवा दीजिए। तो ऐज़ाने गिरामी, रूहानी बीमारी और रूहानी बेदारी के लिए इंसान को चाहिए कि वो दीन से रुजू करे। दीन ने अगर उसके लिए नुस्खा लिख दिया बेदारी का, ज़मीर की बेदारी का, तो उस नुस्खे को उसने अमल करना। अगर उस नुस्खे पर अमल नहीं करेगा तो वो डॉक्टर कहेंगे साहब दवा आप तकिए के नीचे रख के सोएंगे तो ठीक थोड़ी ना होंगे, जब तक दवा खाएंगे नहीं उस वक्त तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो अज़ीज़ाने किरामी, जब तक आप दीन पर अमल नहीं करेंगे, जब तक दीन की बातों को नहीं मानेंगे, जब तक दीन की अजमतों को नहीं जानेंगे, तो फिर ये तो इंसान की जो है आगाही कहाँ से है। तो दीन उसको आगाह करता है। उस ज़माने का फिरौन वो क्या करता था, वो भी कुरान बताता है, दीन बताता है, और आने वाले ज़माने में क्या होने वाला है वो भी दीन बताता है, और इस हाल में क्या हो रहा है ये भी दीन बता रहा है। तो अज़ीज़ाने किरामी, दीनदारी यानी बेदारी, दीनदारी यानी रूह की बेदारी, और अगर दीनदारी से दूर हैं तो रूह की ख्वाब रूह है यानी सोया हुआ है। अगर हमारा ज़मीर सो जाए अज़ीज़ाने किरामी, और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम ये हो रहा है कि इन बच्चों को अखलाक के नाम पर बद अखलाक बनाया जा रहा है, यहाँ पर अपनी टेक केयर के नाम पे बेरहम बनाया जा रहा है। यानी ये मैं देख रहा हूँ, इस बात का मुशाहिदा करता हूँ कि वो पहले अपना देखता है, जैसे जहाज़ में होता है ना कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरे का मास्क लगाओ, समझ ना, यहाँ आते ही शुरू हो जाता है काम कि पहले अपने आप को बचाओ। तो कहते नहीं, पहले अपना दो, सब कुछ अपना दो, अपने लिए करो, उसके बाद टाइम मिले तो देखना। एक साहब को अंगूर बड़े पसंद थे, तो वो जा रहे थे, देखा बड़े ताज़े ताज़े अंगूर बिक रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई अपने ड्राइवर से और वहाँ पे 2 किलो अंगूर ख़रीदे और कहा कि देखो अभी तो ऑफ़िस में मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, तुम हमारी बेगम को दे देना, शाम को खाऊँगा इंशाल्लाह। उन्होंने घर भेज दिए, वो बेचारे आए, जब वापस आए तो खाना वाना खा के कहने लगे वो हमने जो अंगूर भिजवाए थे वो कहाँ हैं, कहा वो तो हमने खा लिए। तो कहा कि खा लिए, बोला हाँ 2 किलो अंगूर खा लिए आपने, कहा भाई बढ़िया थे खा लिए, कहा आपके लिए, कहा और ख़रीद लीजिएगा। तो वो सरकार गए और अपनी तिजोरी खोली और सारा पैसा एक बैग में भरा और चले गए। अरे कहाँ जा रहे हैं, बस गुस्से हो गए कि अंगूर ख़रीदने जा रहे हैं। जब वो पहुँचे, जाने के बाद उन्होंने ज़मीन ख़रीदी, मस्जिद तामीर उसका काम शुरू करवाया, मस्जिद का काम शुरू करवाया और वापस आए लेट नाइट। बीवी ने कहा भाई कहाँ गए थे, आखिर क्या बात है, बोला अपने लिए अंगूर ख़रीदने गया था। कहा लाए तो नहीं, कहा नहीं दुनियावी अंगूर नहीं, मुझे मालूम हो गया कि दुनिया की माल से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, जब मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए इस अंगूरों में से कुछ बचा के नहीं रख सकते तो बाद में मेरे लिए क्या बचाएंगे उस आखिरत के लिए, लिहाजा मैं अपने आखिरत के खाने का इंतज़ाम करने गया। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले। तो अज़ाने गिरामी, बस बेदारी इसी का नाम है। वो बेचारा ख्वाब में था तो वो सोच रहा था बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ये मेरे मौजू में भी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू की जाए। तो पहली है बेदारी और दूसरा है ख्वाब। तो हम अपनी ख्वाब गफलत से अपनी कौम को बाहर लाएँ, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है उसके लिए। और इसी वजह से अल्लाह ने तफक्कुर और तदब्बुर, थिंकिंग एंड थॉट्स का दर्जा इबादत से ज़्यादा रखा है। अगर कोई अपनी कौम की तरक्की के लिए 1 घंटा थिंकिंग एंड थॉट्स करता है, फ़िक्र करता है, तो 70,000 साल की इबादत से अफजल है। और दीन इस तरह से भी कहता है कि तमाम चीज़ें अजमत शहीद पर ख़त्म हो जाती, दुनिया की हर अजमत शहीद की अजमत पे ख़त्म हो जाती है, और दीन का एक हिस्सा उसके नाम लिख दिया जाता है कि इसको बचाने में तुम्हारा हिस्सा है। हर शहीद नहीं, जो शहीद राह खुदा है, वरना हम तो आजकल किसी का भी नाम शहीद रख देते, नहीं जो शहीद राह खुदा है। लेकिन पैगंबर ख़त्म मरतबत फरमाते हैं मीदादुल उलमा अफजलो मिन दमा शहदा, आलिम की कलम की स्याही शहीद के खून से अफजल है। कहते कि शहीद अपना खून दे के मुतमईन हो जाता कि खुदाया जो वादा मैंने तुझसे किया था उसको पूरा कर दिया, मेरी जान गई लेकिन मैं दीन को बचा गया। लेकिन आलिम की कलम जो है वो मुसलसल दीन को बचाती रहती है, इंसानियत को बचाती रहती है, इंसानियत को बचाती रहती है। लिहाजा खुदावंद आलम ने दूसरी हमारे पास जो है एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते हैं कि दूसरी जो हैसियत है वो है सलामती, सालिम जिस्म और बीमारी, उसके मुकाबले में बीमारी। जिस्म की बीमारी का आप हाल सुन चुके हैं, माशाल्लाह अतिबा भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, और कहते हैं कि रूह की सलामती किसे कहते हैं? कहते हैं कि रूह की सलामती अल्लाह ने अमले सवाले में रखी है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेदारी ईमान में रखी है, सलामती अमले सवाले में रखी है। अमले सवाले यानी नेक अमल, नेक आमाल करना। एक जगह इत्तेफाक हुआ तबलीग का, हमने कहा भाई सुबह आशूरा के आमाल होंगे, तो कहने लगे जिसके ख़राब हो वही आमाल करे। तो वो समझते हैं कि आमाल का नाम समझ लेना। बहुत सी चीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, निशानियाँ बहुत अच्छी चीज़ें मैं मानता हूँ, समझ रहे ना। देखा होगा कि मंजर लगाए जाते हैं खेमों में, आग जलने का मंजर भी होता है, ये सब चीज़ें, लेकिन ये वो मंजरों की निशानी है जो दुश्मन ने दी है, जो इमाम हुसैन ने हमें दी है, वो अली असगर को लेके आगे बढ़े पीछे हुए आमाले आशूरा है। तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमल को भी ज़िंदा रखना है, उसके ज़रिए जो है मज़लूमियत को भी ज़िंदा रखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो आमाले आशूरा को ऐसा नहीं है कि किसी मौलवी की इजाद है, बल्कि ये सैयद सज्जाद ने बताया कि ये मेरे बाबा ने जो अमल करके बताया, ये जो चीज़ रही है हम इसको ज़िंदा रखते हैं, और खुदावंद आलम इसको एक अज़मत देता है। हम जब पढ़ा करते थे तो बताया जाता था कि हमारे बहुत से उलमा को ज़िंदगी भर जिंदान में रखा गया उस ज़माने में, ज़ुल्मत के ज़ालिमों के दौर में। तो उनका अमल ये था कि सुबह आमाले आशूरा करते थे हर रोज़, और रात को आमाले शबे कद्र करते थे, क्योंकि उनको नहीं मालूम था ये कौन सा महीना है। सिर्फ इस वास्ते कि ऐसा ना हो कि कोई सुबह ऐसी हो जाए कि आशूर हो और हम आमाले आशूरा ना करें जो इमाम हुसैन ने किया, और कोई रात ऐसी ना हो कि वो शबे कद्र हो और हमारे आमाल, क्योंकि खुदावंद आलम ने इस सुबह में और इस रात में जो असर रखा है, जो बात रखी है अपने से सबसे ज़्यादा करीब बयान फरमाए। तो कहते हैं कि सालिम रूह की सलामती यानी आमाल। कहते हैं कि जब पैगंबर ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद, आपकी हदीस गिरामी है कि इंसान का जब वक्त नज़ा आता है, समझ रहे हैं, तो तीन चीज़ों को उसके सामने हाजिर किया जाता है। एक उसका माल होता है, माल से वो बातें करता है, मैंने तुझे हासिल करने के लिए बड़े लोगों से बुराइयाँ ली, बड़े लोगों की नज़रों में बुरा बना, मैंने बड़े लोगों के हुकूक़ मारे, बड़े लोगों को मैं हरीस कहलाया, लोगों ने मुझे लालची कहा सिर्फ तेरी खातिर, तो मेरा इस वक्त में साथ नहीं देगा। तो माल कहेगा मैं तेरे लिए बस कफन तक हूँ, इस वक्त मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं कफन खरीद के दे दूँगा। माल ये कहे, कहते हैं जब औलाद से वो कहेगा कि मैंने तेरे मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, माँ बाप को छोड़ा, अजीज़ों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तुम क्या करोगे मेरे लिए, मैं इस हालत में हूँ, तो कहेगा बाबा हम आपको कब्र तक पहुँचा देंगे। मुट्ठियों में खाक लेकर लोग आए वक्त दफन, मुट्ठियों में खाक लेकर लोग आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। यानी अजीज जो दुश्मन नहीं करेगा, ये तो वो दोस्त करेंगे कि इंसान को मनोमिट्टी के नीचे दबा के चले। तीसरा कहते हैं कि फिर जब वो मायूस हो जाएगा कि इस माल जिसके लिए मैंने बड़े बुराइयां ली, ये मुझसे कहता सिर्फ कफन तक का साथी हूँ, कफन खरीद दूंगा। औलाद जिसके लिए सब कुछ बुराइयां ली, वो कहती है कि बाबा आखिरी मंजिल तक पहुँचा देंगे। तीसरा उसके सामने सर झुकाए अमल खड़ा है, कहता है कि हाँ मैंने तेरे लिए बड़ा मैंने आगे पीछे हुआ कि करूँ या ना करूँ, बड़ी सुस्ती भी की, अभी सर्दी है, अभी गर्मी है, मैंने इन लोगों को बहुत टाइम दिया, तुझे इतना टाइम नहीं दिया, ठीक है जैसा भी था मैंने किया, तू मेरा क्या करेगा। कहा मैं तेरे साथ कब्र में चलूँगा, मैं तेरे साथ रोज़े क़यामत तक रहूँगा, मैं तेरे साथ रोज़े क़यामत तक रहूँगा। तो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हर इंसान के साथ एक चीज़ पैदा होती है, वो पैदा होती है तो वो ऐसी चीज़ है कि वो तो उसके साथ कब्र में भी दफन हो जाएगी, रोज़े महशर जब खड़ा होगा तो भी खड़ी हो जाएगी, ज़र्रा बराबर होगी लेकिन शैतान के लश्कर से डरने नहीं देगी। फमैया अमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, उसको अपनी किल्लत पे भी इस बात का नाज है कि खुदा ने वादा किया है कि इसकी जजा दूंगा। तो कहते रसूल अल्लाह फरमाते हैं वो तेरा अमल होगा, वो तेरा अमल होगा जो कब्र में तेरे साथ दफन हो जाएगा। ये दुनिया वाले दफन नहीं होंगे, ये अमल तेरे साथ दफन होगा। और अगर कुछ अमल ऐसे होंगे कि जिसको तू जिंदगी बसर करने के लिए छोड़ जाएगा, अगर औलाद को नेकी का हुनर सिखा गया तो वो तेरा अमल जो नेक काम में है, जब तक वो नेकी करता रहेगा इसका अमल और जजा तुझे मिलती रही। तो इमाम रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि इस चीज़ को जो अल्लाह ने तेरे साथ पैदा की है, अल्लाह के हुक्म से पैदा हुई है, इसको ऐसा खूबसूरत बना ले, इसको ऐसा हसीन बना ले, क्योंकि यही तेरे काम आएगा। तो अज़ाने गिरामी, हम अमल अमिल सालेहात, कुरान कहता है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला الذين आमनوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। तो अमल साले को अल्लाह ने एक कैटेगरी दी है कि वो खसारे और खुसरान में नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, اللهم صل على محمد و آل محمد। मैं समझता हूँ वक्त ज़्यादा हो गया है, तो शायद दो चार कुछ बातें चंद आपकी खिदमत में और करना। कहते हैं कि तीसरा यानी छठा मरहला जो तीसरा पैर और पांचवा और छठा जो मरहला है वो बयान किया जाता है कि वहाँ तीसरी चौथी जो चीज़ है जो सलामती के मुकाबले में वो है मर्ज मरीजी। कहते हैं गुनाह का नाम मरीजी है, इस दुनिया में गुनाह का नाम मरीजी है। अगर रूह की बीमारी यानी गुनाह इंसान इससे छुटकारा पाए तौबा की दवा के ज़रिए, इस्तग़फ़ार की दवा के ज़रिए तकवियत करें अपने आप को, तो गुनाह के लिए परवरदिगार आलम ने कहा है कि ये रूह की बीमारी है। जिस तरह जिस्म को बीमारी होती है, इस तरह ये रूह की बीमारी है यानी मर्ज। और मर्ज किस शक्ल में, जिस चीज़ को खुदावंद आलम ने बुरा बताया है उस चीज़ को। लुक़मान हकीम से पूछा कि तुमने अदब कहाँ से सीखा, कहा बेअदबों से, कहा बेअदबों से अदब सीखा। भाई उनसे कहाँ से बेअदब हो, कि उनकी कहाँ क्लास होती है। कहा कि बस जो वो करते थे वो मैं नहीं करता था, जो वो करते थे। तो हर इंसान को खुदावंद आलम ने जो है इस बात की तलकीन कर दी है, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा। कुरान कहता है कि हमने हर इंसान को अच्छाई और बुराई दोनों का इल्म दे दिया। फअलहमहा इल्हाम कर दिया है, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा। फिस्क उसे कहते हैं जो छुपके किया जाए, और फजूर उसे कहते हैं जो खुले में किया जाए, समझ रहे ना। और तकवा जो सामने किया जाए उसको नहीं कहते, जो छुपके किया जाए उसको तकवा कहते हैं। तो अल्लाह ने नेकी को अपने छुपने में बयान किया है। अक्सर लोग कहते हैं कि साहब तकवा जो है वो एक जेल का नाम है। जेल नहीं है, ताले दो तरह से लगते हैं, एक अंदर से लगता है एक बाहर से लगता है। जो बाहर से लगता है उसको जेल कहते हैं, जो अंदर से लगाते हैं वो घर कहते हैं। तो जो पाबंदियाँ दूसरा लगाए उसको जेल कहते हैं, खुद लगाए उसको जेल नहीं कहते। तो कहते तकवा है ये, जिसकी चाबी आपके हाथ में, तकवा जिसकी चाबी आपके हाथ में, ये वो है। लिहाजा इमाम हमारे लिए के मुत्तकीन की हिदायत होगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें मौलाए मुत्तकियान कहते हैं। ये तो हमारे लिए तय हो गया कि अगर वो मौलाए मुत्तकियान है तो फिर हम मुत्तकी नहीं बनेंगे तो कौन होगा। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले। मौला का जिक्र आ गया है तो मैं भी कुछ आपको शेर सुना दूँ, और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक हल्का सा इशारा था कि दरवाज़ा हिला, एक हल्का सा इशारा था कि दरवाज़ा उठा। ये फजीलत मुख्तसर है कुव्वत हैदर के साथ, एक हल्का सा इशारा था कि दरवाज़ा उठा। ये फजीलत मुख्तसर है कुव्वत हैदर के साथ, और उंगलियों की सारी ताकत भी अली ने रोक ली, वरना दीवारें भी खिंचाती दरे खैबर के साथ, वरना दीवारें भी खिंचाती दरे खैबर के साथ। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, अजमत आले मोहम्मद की निशानी है अलम। फौज का दिल है सिपाही की जवानी है अलम। दोस्तों लश्कर इस्लाम का जानी है अलम, दस्ते गद्दार पे खिलता नहीं हिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफ़ादार को मिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफ़ादार को मिलता है अलम। और जब भी कलम उठाएगी दुनिया फरात पर, लिखना पड़ेगा कौन था प्यासा फरात पर, पहरा जो कल बिठाए थे आज आके देख लें, लहरा रहा है किसका फरेरा फरात पर, लहरा रहा है किसका फरेरा फरात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सलावत पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे मोमिनीन तो सुनते रहते हैं आज के, वो मारे का ता हश्र ना भूलेगा जमाना, वो मारे का ता हश्र ना भूलेगा जमाना, खैबर पे अकेला असदुल्लाह का जाना और मश्क लिए नहर पे अब्बास का आना, खैबर पे अकेला असदुल्लाह का जाना और मश्क लिए नहर पे अब्बास का आना, वो बाप का किस्सा था ये बेटे का फसाना, वो बाप का किस्सा था ये बेटे का फसाना, दर किले का अगर हैदर कर्रार ने तोड़ा, दीवारों को लोहे की अलमदार ने तोड़ा, ऐसा तो जबरदस्त कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी जेर नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद। और पांचवी और छठी हालत जो इमाम ने बयान फरमाई है रूह की और जिस्म की, जिस्म की बयान फरमाते हैं कि मौत, हयात और मौत, जिंदगी और मर जाना। जिंदगी क्या है अनासिर में जहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जिस्म राबता है, ये समझ लीजिए कि सिलसिला रिस्क, जिसका उठ जाए उसको मौत कहते हैं। इसी वजह से शहदा के रिस्क की जमानत अल्लाह ने ली कि उनकी ज़िंदगी अभी मुनक़ता नहीं। आम इंसान के लिए रिस्क का मुनक़ता हो जाना मौत है, समझना। लिहाजा कहते हैं कि मौत और ज़िंदगी और मौत, ये इंसान की जिस्म के लिए, ठीक है। इसी तरह से रूह की हयात और रूह की मौत की सिलसिला आले मोहम्मद बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि रूह की ज़िंदगी जो है वो है इल्म, इल्म आगाही ज़िंदगी का नाम। इल्म इंसान को, इल्म करता है ज़माने में खुमैनी पैदा, जहल इंसान को सद्दाम बना देता है, समझ रहे ना। तो हयात इल्म को बताया है और मौत रूह की जहल को बताया है। अगर कोई इंसान जाहिल है तो उसकी रूह की मौत है। कहते हैं कि रूह की हयात के सिलसिले में एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहते हैं कि इल्म जो है इंसान का, अगर अक्ल के पैरू हो, इल्म अगर इंसान का अक्ल के पैरू हो तो ये इल्म उस वक्त इल्म कहलाता है। अगर ये इल्म अक्ल के आगे आगे चले तो फिर ये नुकसान पहुँचाता है। हर मालूमात का नाम इल्म नहीं है, हर मालूमात का नाम इल्म नहीं है, बल्कि इल्म हर उस मुफीद मालूमात को कहते हैं कि जो ज़माने को ज़िंदा कर दे, तभी इस इल्म को हयात कहा जाता है। हर इल्म को, हर मालूमात को, तो फरमाते हैं कि जब मालूमात, और वही बात है कि ये इंसान कहता है कि हमने इल्म से तरक्की कर ली, इल्म से तरक्की कर ली, कहते हैं इल्म से इंसान तो तरक्की कर गया लेकिन इंसानियत की तरक्की अभी रुक गई। इंसान तो तरक्की कर गया, चांद पे पहुंच गया, लेकिन इंसानियत की तरक्की बग़ैर आले मोहम्मद के रुक जाएगी। तो फरमाते कि इल्म जो है उसके लिए कंडीशंस रखी अक्ल की, और अक्ल जिस तरह से देखने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है, सही आँख हो, दूसरा इरादा हो, अगर इरादा नहीं है तो आँख भी काम की नहीं। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि बहुत से लोग अपनी घड़ी साफ़ करते रहते हैं, जैसे ही वो घड़ी साफ़ करके बैठते हैं कहते हैं क्या टाइम हुआ है, वो दोबारा देखते हैं, अभी तो आप घंटे से इसको देख रहे थे, कहा हुजूर इसको साफ़ कर रहा था, टाइम नहीं देख रहा। तो अगर इंसान इरादा ना करे तो इस छोटे से डायल की दो सुइयाँ नज़र ना आए, और वो बग़ैर इरादे के दीन की वसअतों को समझना चाहता है, समझ रहे ना, दीन की वसअतों को समझना चाहता है, ऐसा मुमकिन नहीं। इरादा, कहते हैं कि देखने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है चश्म सही हो, आँख सही हो, समझ रहे ना। वो और बात है कि जो मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, जो चांद कमेटी है उसके सदर नाबीना है और वो ऐलान करते भाइयों चांद दिख गया है, शर्म से पानी पानी हो जाते। तो जाने के नाम हर चीज़ की जो है, एक गांव में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कहा भाई इसकी तारीफ कीजिए इस गांव की। कहने मौली साहब चार का नाम आली में चार हो जाहिल हैं, तीन का नाम साली में तीनों के हाथ पैर नहीं। तो वही तारुफ। तो बहरहाल कहते हैं कि देखने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत है, चश्म हो, इरादा हो, नूर हो, और कोई चीज़ माने ना हो, कोई चीज़ हायल ना हो उस चीज़ को देखने के दरमियान। इसी तरह अक्ल के लिए भी चार चीज़ों की ज़रूरत है, अक्ल सालिम हो, इरादा हो, नूर हो, और जहल माने ना हो, कोई चीज़ माने ना हो कि वो उसको देखने से। जिस तरह से अक्ल, बहुत से कहते हैं कि साहब ये तो हमें दीवाना कह रहे हैं, हमें ऐसा कह रहे हैं। भाई कोई चीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कभी हमारे ऊपर जो है दौलत का पर्दा पड़ जाता है, अक्ल पे कहते हैं कि दौलत का पर्दा पड़ जाता है, कभी मुकाम का पर्दा पड़ जाता है, कभी वो जो है शोहरत का पर्दा पड़ जाता है। अक्ल तो है जभी तो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन पर्दा पड़ गया। तो उस पर्दे को उठाने के लिए शरीयत बयान करती है। तो कहते हैं कि इंसान के लिए कहते हैं कि इल्म का, अक्ल का जो ज़रूरियात हैं, तो इमाम फरमाते हैं कि अक्ल की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि जब इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता है तो वह हर्फ शनाज बन जाता है। जब उसे कोई काम की बात कही जाती है तो वो उसको सुनता है और उस पर अमल करता है, और जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता वो दूसरे की सुनता भी नहीं। अल्लाह ने इसलिए कान दो दिए हैं और ज़बान एक दी है, ज़्यादा सुनो कम बोलो, नहीं ना भाई। जो दो चीज़ें उसका इस्तेमाल कम कर रहा है, और जो कम चीज़ है, और उस एक को भी अल्लाह कहता है अलम नजअल लहु ऐनैन, मैंने देखने के लिए दो आँखें दी, व लिसान व शफतैन, और ज़बान दी तो है लेकिन होठों में बंद करके दी। वो लिसाना हुआ शफतैन, कि हमने होठों में बंद करके दी है, वरना अगर ये खुल जाए तो ये तबाही और बर्बादी में चले, समझ ना। अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ इन बातों को कि ज़बान दो काम करती है, बाहर से ये चीज़ कैसी, ये भी ज़बान बताती है कि ये चीज़ कड़वी है, मीठी है, खट्टी है, तबर्रुक कैसा था, जब ही तो बातें बनाता आदमी कि आज मिर्चें ज़्यादा थी, आज ये कम था, वो बेचारा मर गया बनाते बनाते, और उसके जो है इस्तेमाल में कैसा, ये था वो था ये था। ज़बान ही तो है, यही तो बताती है, ऐसी कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन रखती है गूगल से भी ज़्यादा, कि मियाँ उनके यहाँ का ज़्यादा टेस्ट ही था, पिछले टेस्ट को भी ये बताती है, और सारे टेस्ट इसके ऑन रिकॉर्ड रहते। तो कहते हैं कि ये चीज़ बाहर से कैसी है ये भी यही बताती है, और ये हज़रत अंदर से कैसे ये भी यही बताती है, ये झूठे हैं सच्चे हैं, वादे के वफादार हैं वादे के ख़िलाफ़ हैं, ये भी ज़बान बताती है। तो जाने के नाम ज़बान के ज़रिए जो है, और 80% लोग जहन्नम में ज़बान की वजह से जाएंगे, ये रिवायात है। लोग गलत रिवायत करते हैं, कहते हैं कि 80% औरतें जहन्नम में जाएंगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि बेचारे अल्लामा मजलिसी ने कहा था ज़बान के गुनाह, तो उन्होंने खुद ही सुगरा कुबरा निकाल के कि चूँकि ज़बान इनकी ही ज़्यादा चलती है इसलिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि कहते हैं कि ज़बान के गुनाह वाले, क्योंकि कोई हर आदमी तो बादशाह नहीं है जो जुल्म करे, ताकतवर नहीं है, हर आदमी के पास इतना माल नहीं है जो लोगों के लिए तबाही, कुछ लोगों के पास ही होता है, लेकिन ज़बान ऐसी है कि इसका मीटर चलता रहता है, बस जो है अनलिमिट कॉल होनी चाहिए आपको, अनलिमिट टॉक आपके पास टाइम है तो फिर ये खूब चलती। तो अज़ाने गिराम कुरान मजीद इस चीज़ के लिए बयान करता है, कहता है कि हर्फ शनास होता है, अक्ल हर्फ शनास होती है, अगर कहीं से अच्छी चीज़ मिलती है तो इसको फ़ौरन ले लेती है, चाहे वो जानवरों से ही सही, चाहे वो पहाड़ों से ही सही, चाहे वो जंगलों से सही, जहाँ से इसको अच्छाई मिलती है वहाँ से कबूल करती है अक्ल की बुनियाद पर। दूसरा फरमाते हैं कि अक्ल का काम यह है कि अक्ल इंसान को उसकी तकियेगाह, उसके अमल को बना देती है। आकिल इंसान की तकियागाह जिस पे वो भरोसा करता है वो उसका अमल होता है, और जो इंसान ना अकला होता है वो आरजुओं पर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। इमाम फरमाता है कि वो आरजुओं पे चलता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, अल्लाह कुछ नहीं करना, कहता अल्लाह तो रहमान और रहीम है, यानी फिर वो उससे मिला मिलता, ठीक है, उसकी रहमान और रहीमी, ये तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह। ऐसे जाने गिरामी, मौलाए कायनात ने सलमान फ़ारसी के कफन पे एक शेर लिखा था। सलमान फ़ारसी कौन है? ईमान के 10 दर्जे थे उस वक्त, मासूमीन को हटा के, मासूमीन को हटा के ईमान के 10 दर्जे थे, तो रसूल के सहाबी में 10वां दर्जा सलमान फ़ारसी को मिला था, और उनके कफन पर मौला लिख रहे हैं कि सलमान बस ये ले जाओ। उस पर लिखते हैं कि खुदाया इसलिए सामान ज़्यादा नहीं लाया हूँ क्योंकि एक शरीफ मेज़बान के यहाँ सामान ले जाना अच्छी बात नहीं। एक शरीफ मेज़बान के लिए कि मैं अपना सामान, अपना खाने का सामान अपने साथ लूँ। बहरहाल वो मौला के क्या वाना मीनिंग थे हम ना निकालें, चूँकि हम 10वें दर्जे पर नहीं हैं, कहीं शेर पर हम तकिया करें नहीं, पहले अमल करें। तो कहते हैं कि अक्ल जो है इंसान को तकिया गाह जो है उसकी अमल है, और जहल उसका तकिए गाह जो है उसका आरजू है। तीसरा फरमाते हैं कि मजलूम की हिमायत, अक्ल हमेशा मजलूम की हिमायत करती है, जालिम की मुखालफत करती है। समझ रहे हैं? मुमकिन है कि उसमें इतनी ताकत ना हो वो जालिम को रोके, लेकिन उस जुल्म को अपनी ज़ात से ख़त्म कर देती कि मैं ये जुल्म नहीं करूँगा। ये भी एक तरीका है। दूसरा फरमाते हैं कि जहल जो है, ना अकली जो है, इंसान को जालिम का तरफदार बना देती। बिल्कुल उल्टा, आप देखिए कि हम जहल और अक्ल में। और फरमाते हैं कि मसावात, बराबरी, अक्ल का तकाजा यह है कि वो हमेशा बराबर बांटना चाहती है, लेकिन ना अकली इंसान को हमेशा बेईमानी पर उतार देती। और उसके बाद कहते हैं कि अक्ल इंसान को इत्तेसाल बे बका करती है, यानी उस चीज़ की तरफ ले जाती है जो बाकी रहने वाली। कुल्लु मन अलैहा फान वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। तमाम चीज़ों को फना हो जाना है लेकिन चेहरे खुदा को बाकी रहना है, वजहुल्ला को। और यही वजह है कि अइमा थार अलैहि सलाम को वजहुल्ला ज़्यारात में बयान किया गया है। खुद कहते हैं वजहुल्ला, हज़रत अली अलैहि सलाम को कहते हैं, तमाम अइमा को वजहुल्ला कहा गया है, जो बाकी रहने वाली चीज़। फ़र्क यह है कि वो अज़ली है, अबदी है, अज़ल से है और अबद तक है। ये अज़ल से नहीं थे, खल्क किए गए लेकिन अबद तक हैं, ये अबद तक है, और हम लोगों को ख़त्म किया जाएगा, हम मुमकिनुल वजूद में। तो कहते हैं कि इत्तेसाल बे अक्ल हमेशा उस चीज़ की तरफ जाती है और ले जाती है कि जो चीज़ बाकी रहती है उस चीज़ की तरफ, और जहल उस तरफ ले जाता है जो फना होने वाला है, जो फना होने वाला है। आप अंदाज़ा लगाइए, मुआविया, आप इसकी हुकूमत को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मुआविया की हुकूमत में 1200 गवर्नर थे। गवर्नर शहर का तो होता ही होगा, 1200 गवर्नर थे और 15,000 जुमे कायम किए थे इसने। अब लोग इसीलिए तो इसको अमीर माविया करते हैं, लोग सोचते हैं अरे जुमा कायम कर दी, लेकिन अपने मफाद के लिए धोखा देना। 15,000 खुतबों में मौलाए कायनात को शब्बो सितम करना, 15,000 मिंबरों से। तो माविया समझ रहा था कि मैं ये जो बना रहा हूँ ये बाकी रह जाएगा। मस्जिद की बका है, मस्जिद से दिए गए बुरे बयान की बका नहीं है। वो जो 15,000 इतनी बड़ी तादाद खड़ी कर गया मौलाए कायनात के लिए, और उसके बाद आकर देखे तो सही कि मौला मौला रहे और वो क्या रहा, समझ रहे? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब अक्ल का इस्तेमाल होता है, तो आप तारीख़ पढ़ेंगे तो तारीख़ में लिखा, आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा, खलीफा था अब्बासी। हारून रशीद के 3 बेटे थे, एक का नाम था मामून, एक का नाम था अमीन और एक का नाम था कासिम। मामून और अमीन ये दोनों भाई आपस में खिलाफत के लिए भी लड़ते रहे, फनाफिल हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन ये जो कासिम था, कासिम मोतमंद इसका नाम था, इसने कहा कि मैं अक्ल की पैरवी करूँगा, मैं बाप की पैरवी नहीं करूँगा। मेरे बाबा ने भी ये सोचा कि आले मोहम्मद का माल छीन लो, गज़ब कर लो मुकाम को, और अब ये मेरे भाई भी यही कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, इन सबको छोड़ दिया, इमाम की हदीस सुन के और ये सारी चीज़ उसने छोड़ दी, और वो इस्लाह कर ली उसने अपनी। उसने कहा कि मुझे उससे जुड़ना है जो बाकी रहना है, मुझे उससे नहीं जुड़ना है जो फना हो जाना है। कासिम, इसने जो है अपने शहनशाही लिबास जो भी थे, शाही लिबास ही उतार दिए, सादा लिबास पहनने लगा, साथ ही सादा रोटी खाता था, अपनी मजदूरी करके खाता था। तो लोगों ने कहा कि बादशाह हमें इससे मजदूरी करवाने में भी शर्म आती है, और ये जो है क्या हाल बना रखा है, ये तबाह हो जाएगा, तेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। तो हारून रशीद ने उसको बुलाया, कहने लगा कि तुम हमारी शान ख़राब करना चाहते हो। देखो तुम अपने दोनों भाइयों की तरह बनो, किस तरह शाहाना रहते हैं, देखो ऐसा है वैसा है। उसने कहा देखो, कहने बाप बेटा मैं तुम्हें खो दूंगा, इस तरह रहोगे तो तुम खो जाओगे, कभी पब्लिक के सामने आवाम के सामने तुम इस लिबास में आ जाओ और मुझे शर्म आएगी कहने में ये मेरा बेटा है। तो उसने कहा बाबा अगर आप मुझे खो दोगे तो दो महबूब तो हैं आपके पास, लेकिन मेरा तो एक ही महबूब है, वो है अल्लाह, वो खो गया तो मैं क्या करूँगा, वो खो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने महबूब को नहीं खोना चाहता। आपको मुबारक हो, पहली बात तो मशवरा ये देता हूँ कि ना आप भी छोड़ दो और इनसे भी कहो ये आले मोहम्मद का हक है, इसको छोड़ दो। लेकिन उसके साथियों ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको जिम्मेदारी दो और ऐसा करो इसको मिस्र का गवर्नर बना दो। उसने इसको मिस्र की गवर्नर दी और सारे तैयार करके हुक्मनामा और कहा इसको सोना दो चांदी दो, इससे कहो हमें कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, सिर्फ तुम हुकूमत करो, वहाँ के गवर्नर बन के रहो। इसने कहा ये जबर है या इख्तियार है, कहा नहीं ये जबर है। उसने कहा अच्छा, उसको ले तो लिया और रात को ये फरार हो गया, ये गायब हो गया वहाँ से, इसने छोड़ दिया इसके हारून रशीद के वतन को, गायब हो गया, ढूंढते रहे कहीं नहीं मिला, ये चला गया कूफा, ये बसरा, और बसरा जाके इसने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम अहमद अहमद रख लिया। अहमद इसने नाम रख लिया तो इसको तारीख में एक दूसरे नाम से जाना गया, अहमद सप्ती, सप्त कहते हैं सैटरडे को। वहाँ पर बसरे में क्या होता था कि मज़दूरों को जब हायर किया जाता था तो वो सैटरडे का मार्केट लगता था, वहाँ पे मज़दूर खड़े होते थे और वो लोग पूरे महीने पूरे हफ्ते के लिए ले जाते थे। उसका क्या था, अहमद चूँकि वो सिर्फ सैटरडे को ही काम करता था, आता था सैटरडे को मज़दूरी के लिए खड़ा होता था, उसने एक बेलचा खरीदा अपने लिए, कुल्हाड़ी खरीदी और काम कर, लाख उसको कहते थे मुजरत देंगे ये देंगे, वो कहता नहीं मेरे लिए एक दिन कमाऊंगा ताकि बकिया दिन मैं अल्लाह की इबादत करूं, यानी इस दिन भी करूं। और जिसके यहाँ काम करता था उससे ये कहता था कि देखो अजान का टाइम मेरा, ये मेरा भी नहीं अल्लाह का है, इबादत के टाइम में मुझसे काम नहीं लोगे, लेकिन हाँ। तो एक बहुत ही मुतदयन शख्स था बसरे में, वो इसको ले जाता है, ले जाने के बाद इसको जब कहता कि एक दिन काम करोगे, कहा कि मुझे सूखी रोटी खाने के लिए एक दिन की मजदूरी काफ़ी है, मैं पूरे हफ्ते अल्लाह के लिए काम करता हूँ, जिसने मुझे बनाया है मुझे उसके लिए करना है, मुझे वो करना है कि जो बाकी रहना है, मुझे वो नहीं करना जो फ़ानी हो जाना है, फना के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूँ, बका के लिए अपनी जान को मैं बाजी लगा दूँ। और ये आके चला गया और वो मुतदयन के यहाँ काम किया, नमाज के टाइम इसको कहा ठीक है नमाज का टाइम तुम्हें दे दिया जाएगा, नमाज पढ़ता, और अहमद सप्ती तीन बराबर काम करता मजदूरों से। तो बड़े खुश थे कि भाई ये तो तीन बराबर काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें। एक दिन ये हुआ कि वो उसने आया ही नहीं, कई दिन हो गए, तो वो जो मुतदयन शख्स था उसने कहा कि मुझे चाहिए कि मालूम करूँ वो क्या हुआ। तो लोगों ने कहा वो आ नहीं रहा है बहुत दिनों से बाज़ार में, लिहाजा चाहिए लगता है वो बीमार हो गया। जब ये गए तो अहमद सप्ती बीमार उस पर बिस्तर पे पड़ा हुआ, उसने कहा कि तुम्हारा ये हाल हो रहा है तुम आते नहीं हो, चलो हम तुम्हें पहले खाना देते हैं और फिर पैसा देंगे। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे लगता है मेरे खुदा का हुक्म आने वाला और मैं जा रहा हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे दो काम कर दो। क्या? कहा एक तो ये मुझसे वादा करो मेरे ये बेलचा और मेरी कुल्हाड़ी बेच के मुझे कफन दोगे, मुझे तुम्हारे माल से और किसी और के माल से कफन नहीं चाहिए, मुझे अपने माल से कफन चाहिए, अपने माल से ज़मीन चाहिए, मुझे दफना देना ख़रीद के, ये इतना हो मैं समझता हूँ हो जाएगा। दूसरा ये कि ये मेरी अंगूठी लो और मेरे बाप हारून रशीद को दे देना और उससे कहना कि मुझे नहीं लगता कि मैं जितने दिन मैंने इस बैतुल माल की अंगूठी को पहना है मैं इसका जवाब अल्लाह को नहीं दे पाऊँगा, लिहाजा ये बैतुल माल की अंगूठी है जो तुमने मेरी उंगली में डाल दी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको तुम उन यतीम और बेवाओं के पास वापस लौटा दो जिनका ये माल बनता है। तो अज़ाने गिरामी जब इंसान अक्ल की पैरवी करता है, जब इंसान अक्ल की पैरवी करता है तो वो हारून रशीद की औलाद ही क्यों ना हो मिंबर रसूल से उसका जिक्र होता है। ये हक की पैरवी वतवासो बिल हक वतवासव बिसब्र। तो ऐज़ाने गिरामी, इंसान को कहते हैं कि ज़िंदगी इल्म का नाम है, और इल्म अमल का नाम है, और अमल अमल साले का नाम है, और मौत रूह की जो है जहालत का नाम है के मुकाबले में आना। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जहल ने हमेशा नुकसान उठाया। अल्लाह ने शैतान से पूछा, ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया वो क्यों? शैतान कहता है कि खुदाया तू हकीम है, तू तो हकीम है, तू तो जानता मैंने ऐसा क्यों किया। तो अल्लाह ने कहा कि अगर तू मुझे हकीम मानता तो मुझसे ये सवाल ही नहीं करता कि मैंने ऐसा हुक्म क्यों दिया आदम का। तो कहा कि तुमने आदम को क्यों बहकाया? तो कहता रब्बे बेमा अगवैतनी, खुदाया तूने मुझे अगवा कर लिया था इसलिए मैंने ऐसा किया। यानी अल्लाह पे ही अपनी, आदम से पूछा तुमने क्यों किया भैया, इसके बहकावे में क्यों आए? तो आदम कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, खुदाया मैंने तेरा क्या बिगाड़ लिया, मैंने तो अपने ही नफ्स पे जुल्म कर लिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जहाँ पर इल्म होता है वहाँ इंकसारी होती है, अमल होता है। ये बहुत सी दुनिया हमें गलत रास्ते पे चलाना चाहती है, लेकिन आले मोहम्मद ने हमें सही रास्ता दिया है। अल्लाह ने कहा है कि हमने तुम्हारी हिदायत कर दी है, शाकिरन व कफूरा, दोनों रास्तों पर, खुला रास्ता भी बता दिया, अंधेरा रास्ता भी बता दिया। तो ऐज़ाने गिरामी, जहाँ पर इल्म होता है, जहाँ पर मारिफत होती है, वहाँ पर मोहब्बत और इश्क के फूल खिलते हैं। अगर मारिफत नहीं है तो इश्क के फूल खिलने वाले नहीं हैं। ऐज़ाने गिरामी, जिस अय्याम से हम गुज़र रहे हैं, ये अय्याम वो हैं कि आले मोहम्मद सफ़र में है। कूफे से आपको रवाना कर दिया गया है शाम के लिए, सरहाए शहदा भी जा रहे। मैं एक वाक़ अक्सर बयान करता हूँ, तारीख़ी है, बच्चों के लिए बताना ज़रूरी है, कि जब ईरान पर हमला हुआ और वहाँ से कनीज़ों को लाया गया और उन कनीज़ों को बाज़ार मदीना में बेचा जा रहा था, तो कंबर ने आके मौला से कहा, मौला कुछ ख़वातीन आज़ाद घर की लगती हैं, वो कनीज़ें नहीं हैं, लेकिन खलीफा वक्त उनको भी बेच रहा है। मौलाए कायनात ने अपने हाथों की मिट्टी को झाड़ा और फौरन मदीने के उस बाज़ार में पहुँचे जहाँ कनीज़ों को बेचा जा रहा था। मौला ने फरमाया कि खलीफा तू जानता है इस्लाम में आज़ाद घराने की औरतों को कनीज़ी भी नहीं बेच सकते। तो कहा अली फिर क्या किया जाए? कहा उनको इख्तियार है, अगर वो चाहें तो हम इज़्ज़त और एहतराम से उनको वापस लौटा दें, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो यहाँ पर इज़्ज़त और शरफ़ से रहें, और या फिर वो यहाँ रहें और जो भी जो इस्लामी टैक्स बनते हैं, जिस तरीके से भी वो काम करें या जो कहें वो रहें, या यहाँ पर शादी करके ये मुसलमान हो जाएं। तो मौला ने उनको इख्तियार दिया। दो थी, एक शहज़ादी थी, एक कनीज थी, एक वज़ीरज़ादी थी। शहज़ादी से पूछा तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ उंगली उठा दी कि मैं इनसे शादी करना चाहती। मौलाए कायनात ने मसावात, जिसके घर में बराबरी का इंसाफ मिलता हो, क्योंकि फिज़ा को यही कह के तो रसूल ने दिया था कि बेटी एक दिन तुम काम करोगी, एक दिन ये काम करेगी, इनकी खिदमत करे चंद रोज़ जो बांदी की तरह, उसका किरदार चमकने लगे चांदी की तरह। इस मुसावात के तहत मौलाए कायनात ने इस बीवी का अक्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करने का वादा कर लिया। दूसरी से पूछा, कहा तुम क्या चाहती हो? ये वज़ीरज़ादी थी, इसने कहा कि मैं मालिक अश्तर से शादी करना चाहती हूँ। मालिक अश्तर से इनकी शादी की मौला ने। उसके बाद मौला ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि एक वक्त में कितनी कनीज़ें तुम्हारी खिदमत करती थी? वज़ीरज़ादी ने कहा कि 50 कनीज़ें बादशाह ज़ादी की खिदमत में एक टाइम में रहती थी और 20 कनीज़ें मेरी खिदमत में, यानी वज़ीरज़ादी की। तो मौला ने कहा कि इनका स्टेटस बाकी रखता है इस्लाम, लिहाजा खलीफा वक्त से कहा कि अब ये मुसलमान की बीवियाँ बन चुकी हैं, लिहाजा इनको वही इज्जत और शरफ और वही स्टेटस इनको मिलना चाहिए। 50 कनीज़ें इनकी खिदमत में दी जाए और 20 कनीज़ें इनकी खिदमत में दी जाए, और बकिया कनीज़ों को मौलाए कायनात ने ख़रीद लिया। इस तरह से मसावात दी। शादी के दूसरे दिन जब इस बीवी से पूछा कि बीवी आपको हुसैन कैसे लगे, तो अपनी 50 कनीज़ों में से 20 को राह खुदा में आज़ाद करके कहने लगे कि मैं क्या बयान करूँ इस शहज़ादी की तारीफ़। और 20 कनीज़ें जब सैयद सज्जाद की विलादत हुई तो इस बीबी शहरबानों ने 20 कनीज़ें उस वक्त आज़ाद की, लेकिन 10 कनीज़ों ने आज़ाद होने से इनकार कर दिया। कहा कि बीबी हम इस दरवाज़े पर आपकी कनीज़ी करने के लिए आए हैं, हमें ये दरवाज़ा नहीं छोड़ना है। इनमें एक बीबी थी जिसका नाम शीरी था। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करती थी। इसकी ज़िंदगी दो, एक ग़ुलाम और एक कनीज़, दो ऐसे तारीख़ में गुजरे हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत की है, जनाब फिज़ा के अलावा इमाम हुसैन। एक जनाब जॉन गफ़ारी, अबी ज़र गफ़ारी के ग़ुलाम, ये हमेशा इमाम हुसैन की बची हुई रोटी खाते थे, हमेशा कहते थे मौला मुझे इसमें जो मज़ा आता है मुझे बहुत अच्छा लगता। उसको भी शरीयत ने शरफ़ दिया, वताबत अर्ज़ अल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम, अय शहदाए करबला, जहाँ आप दफन हो गए वो ज़मीन चमकने लगी। और दूसरी ये बीबी थी जो हमेशा मौलाए कायनात मौला हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया करती थी, खुश होती थी, मुस्कुराती थी, देखती थी, अगर मौला नज़र नहीं आती तो परेशान। तो बीबी शहरबानों ने इनको आज़ाद कहा कि मैं तुम्हें लिबास फ़ाखरा पहनाती हूँ, तुम मौला से अक़्द कर लो। तो मौला ने कहा नहीं, ये अक़्द मैं नहीं करूँगा, बल्कि ये किसी की अमानत है मेरे पास, आपने आज़ाद कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हुआ क्या कि उस तरफ एक किलेदार था जो ईसाई था, ख्वाब में क्या देखता है, उसका अक़्द हो रहा है, लड़के की तरफ से हज़रत ईसा अक़्द पढ़ा रहे हैं और लड़की की जानिब से रसूल अल्लाह अक़्द पढ़ा रहे हैं। और जब इसका यह अक़्द हो गया तो कहा कि यसरब में तुम्हारी दुल्हन है, जाके ले लो। ये शख्स वहाँ से चला और चलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आने के बाद अपने ख्वाब को बयान किया। आपने फरमाया कि हाँ तुम सही कहते हो, वो जौजा तुम्हारी मेरे पास है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका अक़्द पढ़ाया, वो मुसलमान हुआ इमाम के हाथों पर, और उससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरी का अक़्द कर दिया। जब शीरी से अक़्द हो गया तो शीरी कहने लगी मौला मैं अपनी ज़िंदगी को आप पर क़ुरबान करना चाहती थी, मैं यहीं मरना चाहती थी। इमाम ने फरमाया कि शीरी तुम पहली सफ़ीर हो हमारी जो मदीने से जा रही हो, तुम्हारे जाने से हमारी मारिफत के फूल खिलेंगे, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, हमारी मोहब्बत, चूँकि जितना नज़दीक से तुमने हमारे घराने को देखा है उतना किसी ने नहीं देखा, लिहाजा जाओ तुम्हारे लिए ज़मीन फराहम है। ये शख्स अब्दुल्ला बिन कैस नाम है इसका, ये बहुत ईमानदार और शरीफ इंसान है, ये किलेदार है, तुम देखते ही देखते पूरे इलाके में आलम मोहम्मद की मारिफत को फैला दोगी। शीरी कहती है कि आका लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपसे मिलने आती रहूँ। मौला ने कहा कि शीरी एक दिन हम तुम्हारे पास आएंगे। शीरी ने हुसैन इब्ने अली से वादा कर लिया। शीरी रुख्सत होकर उस किलेदार अब्दुल्ला बिन कैस के साथ आ गई, अपने दिनों को गिनती रही, शहज़ादे को याद करती रही। तारीख लिखती है कि इसने अपने शौहर से बात की, कहा कि मेरे आका ने आने का वादा किया था और हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा मैं चाहती हूँ अपने आका को यहाँ मेहमान बुला लूँ। अब्दुल्ला बिन कैस खुश हुआ, कहा कर मैं खुद जा के बुला के लाऊँगा। शीरी ने कहा नहीं, आका को पैगाम देते हैं, वो मालिक हैं, मर्जी मुख्तार हैं, वो जब आएंगे हम यहाँ तैयारियाँ करेंगे। अपने ग़ुलाम को भेजा, ये ग़ुलाम मदीने पहुँचा तो हुसैन मदीना छोड़ चुके थे। ये ग़ुलाम मक्का मुकर्रमा में आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात की। मौला ने फरमाया शीरी से कहो हम मदीना छोड़ चुके हैं और हम करीब तुम्हारे पास आने वाले हैं। और मौला के हाथ में उस वक्त जनाब अली असगर थे और पूरी फहरिस्त तैयार की कि मेरे साथ कौन कौन है, और ये ग़ुलाम सारी इत्तलात लेके वापस आया और शीरी को आकर दी कि शीरी तेरा मौला मदीना छोड़ चुका है, मक्का से निकलने के बाद हज के बाद इंशाल्लाह मौला तुम्हारे पास आएंगे, और उनके साथ साथ ये हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें। जब शीरी ने देखा तो ये तैयारी में लग गई, जनाब अली असगर के लिए झूले तक का अहतमाम किया, जनाब ओनो मोहम्मद, जनाब अली अकबर के लिए मसनद बिनाई, और अपने इलाके की ख़वातीन से कहती थी देखो मेरे जन्नत के रहने वाले मेरे घर आ रहे हैं, अपने मर्दों से कहना कि अपने कोठों पर ना चढ़ें, अपने घर के कोठों पे ना चढ़े, और ये बीबियाँ जब तक यहाँ रहें कोशिश करना कि किसी की आवाज़ बुलंद ना हो। इसी इंतज़ार में ये बीबी अपने वक्त को गुजारती रही। एक दिन क्या देखती है ख्वाब में कि मौला दरवाजे पर खड़े आवाज़ देते हैं, शीरी तेरा आका तेरे पास आया है। शीरी बेदार हुई, अब्दुल्ला बिन कैस को इसने बेदार किया, अब्दुल्ला मेरा मौला आ गया। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने अपने निगहबानों से कहा हुआ है कि जब अगर कोई यसरब से कोई काफिला आए तो ज़रूर बताना, शीरी ये रात है, रात में तेरा मौला कैसे आ सकता है, अरब का दस्तूर है कि रात में आराम किया जाता है। कहती है अब्दुल्ला तुम नहीं जानते मेरा आका ज़ादियों के साथ है, अली ज़ादियाँ रात में सफ़र करती हैं। लिहाजा अब्दुल्ला बिन कैस से कहती है अब्दुल्ला मेरा आका आया है। शीरी पा रहना अपने शौहर के साथ किले के दरवाजे की तरफ जाती है। रास्ते में क्या देखते हैं कि एक सिपाही वापस चला आ रहा है, कहा क्या बात है? कहा आका कोई काफला है जो शाम की तरफ जा रहा है, उसके पास पानी ख़त्म हो गया है, उनके साथ कुछ असीर हैं। अब्दुल्ला कहता है कि शाम वालों से मेरे आका का क्या लेना देना, मेरा आका यशरब का शहज़ादा है और ये असीर कौन है? शीरी कहती है कि अब्दुल्ला हमें जाकर देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरा आका आया हो। एक मर्तबा जब शीरी दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखा कि सिपाही शाम है जो पानी के बग़ैर जाबलब है और परेशान सिपाही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बीबियां हैं जो बैठी हुई हैं। एक मर्तबा शीरी उन बीबियों की तरफ गई और जाने के बाद एहसास खुशबू किया, कहा कि मुझे खुशबू तो ऐसी आती है जो मेरे पहचान की है, लेकिन बीबियां ज़रा ये तो बताओ कि तुम हो कौन, कहाँ से आई हो? एक मर्तबा इतना सवाल करना था, जनाब ज़ैनब बताने से इनकार करना चाहती हैं, लेकिन एक सरे बुरीदा जो नोके नेजा पर था आवाज आई है, शीरी तेरा आका तेरे पास आया है। अब जो शीरी ने आका की आवाज सुनी, उसने कहा ये बीबियां कौन हैं? ज़ैनब ने कहा क्या तू जानती है शीरी मैं कौन हूं? अरे मैं अली की लाडली ज़ैनब हूं, हादही कुलसूम, हादही फिजदा, हादही उम्मे लैला और रबाब फरवा। एक मर्तबा शीरी ने कहा आका मुझे हुक्म दीजिए मैं इन सिपाहियों को गिरफ्तार कर लूं और इनको कत्ल कर दूं, ये किला आपसे मुताल्लिक है। सैयद सज्जाद ने सर को झुका लिया, ऐ शीरी अगर हम शाम ना गए तो शाम वाले हुसैन को खारजी कहेंगे। अजीज हो, अरे सैयद सज्जाद मैं कहूंगा मौला, अरे शाम वाले आका को खारजी ना कहें, नवासा रसूल जाने। सैयद सज्जाद ने इस जुमले की क्या कीमत अदा की, अरे सैयद सज्जाद मदीना तो वापस आ गए, जब जब शाम का नाम आता सैयद सज्जाद आंख खून के आंसू रोते, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون رزم بقضائه تسلیما لعمره بار لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار لا تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔ میرے معبود در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود ہماری نسلوں میں عاشقان آل محمد پیدا ہوتے رہیں۔ میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے سب بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، عزائے حسینی کی حفاظت فرما، علماء اعلیٰ مراجع اکرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، معمار بقی کے ساتھ ہم سب کو مزدوران جنت البقی میں شمار فرما، ہمارے گناہوں اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حج بیت اللہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما، ان مراکز دینیہ اور علمیہ کی حفاظت فرما، اس کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔